एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
और आज हमारे पास जो चर्चा का विषय है वो एक ऐसी किताब है जिसने वाकई दुनिया को देखने का नजरिया बदला, एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशंस।
हाँ, 1776 में आई थी ये किताब, लेकिन कमाल की बात है हमारे श्रोता ने जो सामग्री भेजी है उससे ये साफ है कि इसके विचार आज भी कितने जिंदा हैं, कितने प्रासंगिक हैं।
बिल्कुल, जब भी मतलब फ्री मार्केट की बात होती है या ग्लोबलाइजेशन की या फिर ये कि सरकार को कितना दखल देना चाहिए कितना नहीं, स्मिथ का नाम आ ही जाता है।
सही, तो आज कोशिश यही रहेगी कि श्रोता के भेजे स्रोतों से समझें कि ये 250 साल पुरानी बातें आज क्या मायने रखती हैं, और खासकर ये कि देश अमीर बनते कैसे हैं, है ना?
हाँ, तो शुरुआत करते हैं लेखक से। एडम स्मिथ 1723 से 1790 स्कॉटलैंड के थे,
जिन्हें अक्सर लोग अर्थशास्त्र का पितामह या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कह देते हैं।
जी, पर मजे की बात यह है, और ये उनके काम को समझने के लिए जरूरी भी है, कि वो सिर्फ कोई इकोनॉमिस्ट नहीं थे जो बस आंकड़ों में उलझे रहे।
बिल्कुल नहीं, वो तो असल में नैतिक दर्शन मतलब मॉरल फिलॉसफी के प्रोफेसर थे ग्लासगो यूनिवर्सिटी में।
हाँ, और वेल्थ ऑफ नेशंस से पहले उनकी एक और बहुत महत्वपूर्ण किताब आई थी, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स।
अच्छा,
उसमें क्या था?
उसमें उन्होंने सहानुभूति, नैतिकता, इंसान एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, इन सब पर लिखा था। तो जब वो अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वो सिर्फ पैसे या मुनाफे की बात नहीं होती।
मतलब उसमें एक मानवीय पहलू, एक सामाजिक पहलू हमेशा जुड़ा रहता है।
बिल्कुल, यही चीज उनके नजरिए को खास बनाती है। वो इकोनॉमी को समाज और इंसानी फितरत से जोड़कर देख रहे थे।
और वो समय भी तो अलग था, औद्योगिक क्रांति बस शुरू ही हो रही थी, है ना, ब्रिटेन में।
हाँ बिल्कुल, नई मशीनें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, शहर फैल रहे थे। उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा, तो उनका विश्लेषण सिर्फ किताबी नहीं था, उसमें जमीनी हकीकत की समझ थी। तो फिर आते हैं इस किताब पर, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इतनी मोटी किताब है, इसका निचोड़ क्या है, मतलब मुख्य बात क्या है?
देखिए, सबसे बड़ी बात जो स्मिथ ने कही वो उस वक्त की सोच के बिल्कुल उलट थी। तब लोग मानते थे कि देश की दौलत मतलब उसके खजाने में कितना सोना चांदी है।
हाँ, वो मर्केंटलिज्म वाली सोच।
जी, स्मिथ ने कहा नहीं, असली दौलत ये नहीं है। असली दौलत है वो सामान और सेवाएं जो देश के लोग पैदा करते हैं और इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा, जिसे आज हम बड़े आराम से GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद कह देते हैं।
बिल्कुल, ये उस जमाने के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी विचार था।
और ये दौलत, ये GDP बढ़ती कैसे है स्मिथ के हिसाब से?
स्मिथ का बड़ा आइडिया था मुक्त बाजार, फ्री मार्केट। उनका मानना था कि जब लोग अपने भले के लिए काम करते हैं, जिसे उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट कहा,
स्वाहित।
हाँ, स्वाहित। और जब कामों का बंटवारा होता है मतलब डिविजन ऑफ लेबर, और जब खुली प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन होता है, तो बिना किसी बड़ी प्लानिंग के, बिना सरकार के ज्यादा दखल के, एक तरह का अदृश्य हाथ, एक इनविजिबल हैंड काम करता है।
अदृश्य हाथ, ये तो बहुत सुना है।
हाँ, ये अनजाने में ही पूरे समाज को आगे ले जाता है। किसी का इरादा नहीं होता समाज का भला करने का, पर हो जाता है।
वाह, ये तो कमाल का विचार है। मतलब उस वक्त की जो सोच थी मर्केंटलिज्म, वो तो इसके बिल्कुल उलट थी।
बिल्कुल उलट। वो मानते थे कि दुनिया में दौलत फिक्स्ड है, एक देश अमीर बनेगा तो दूसरा गरीब होगा ही। इसीलिए वो एक्सपोर्ट बढ़ाने और इम्पोर्ट घटाने पे जोर देते थे, सोना इकट्ठा करो।
अच्छा,
स्मिथ ने कहा यह गलत है, ट्रेड कोई लड़ाई नहीं है, ये तो विन विन हो सकता है अगर सही तरीके से किया जाए। वो नेताओं को, पॉलिसी मेकर्स को आर्थिक आजादी के फायदे समझाना चाहते थे।
तो ये किताब एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था की यात्रा कराती है।
हाँ बिल्कुल, शुरू होती है बहुत बेसिक चीजों से, जैसे काम का बंटवारा मतलब डिविजन ऑफ लेबर, पैसा क्यों जरूरी है, चीजों की कीमत कैसे तय होती है। फिर बात आगे बढ़ती है, पूंजी कैसे जमा होती है, समाज के अलग अलग वर्ग क्या करते हैं, मजदूर, मालिक, जमींदार, और हाँ, सरकार का क्या रोल है। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, इसमें इतिहास है, समाज है, राजनीति है, सब मिला हुआ है।
चलिए, तो अब श्रोता के भेजे स्रोतों को भी ध्यान में रखते हुए किताब के कुछ खास हिस्सों को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। पहली किताब जहां वो श्रम विभाजन की बात करते हैं।
हाँ, डिविजन ऑफ लेबर। स्मिथ कहते हैं कि यही उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे बड़ा राज है।
और वो पिन फैक्ट्री वाला उदाहरण तो बहुत मशहूर है
जी,
कि एक अकेला आदमी शायद दिन में एक पिन भी मुश्किल से बना पाए, लेकिन अगर काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, कोई तार खींचे, कोई काटे, कोई नोक पहनी करे, कोई पॉलिश करे, तो 10 लोग मिलकर दिन में हजारों, शायद 48,000 पिन बना सकते हैं।
क्या बात है, ये कैसे होता है, मतलब इसके पीछे कारण क्या है? 3 मुख्य कारण बताते हैं स्मिथ। 1, जब आप एक ही काम बार बार करते हैं तो आपकी कुशलता, डेक्सटेरिटी बढ़ जाती है, आप तेज हो जाते हैं।
सही है।
दूसरा, काम बदलने में जो वक्त बर्बाद होता है वो बच जाता है।
हाँ, ये भी है।
और तीसरा, जब आप एक ही खास काम पर ध्यान लगाते हैं तो अक्सर उसे करने के बेहतर तरीके या नई मशीनें ईजाद करने का ख्याल भी आ जाता है।
वाह, ये तो आज भी उतना ही सच लगता है, किसी भी फैक्ट्री में या ऑफिस में भी स्पेशलाइजेशन।
बिल्कुल। फिर स्मिथ ये भी बताते हैं कि ये श्रम विभाजन बाजार के साइज पर निर्भर करता है। जितना बड़ा बाजार होगा उतनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन मुमकिन होगी।
अच्छा, और यहीं पर पैसे यानी मुद्रा की जरूरत पड़ती होगी लेन देन आसान करने के लिए।
हाँ बिल्कुल। और फिर वो कीमत यानी प्राइस की बात करते हैं। एक होती है प्राकृतिक कीमत, जो लागत पर आधारित है, और एक होती है बाजार कीमत, जो डिमांड और सप्लाई से तय होती है। और कंपटीशन ये पक्का कहता है कि लंबे समय में बाजार कीमत प्राकृतिक कीमत के आसपास ही रहे, इससे संसाधन सही जगह लगते हैं।
और कीमत के 3 हिस्से बताते हैं वो, मजदूरी, मुनाफा और किराया।
जी,
वेजेस, प्रॉफिट, रेंट।
जी,
फिर दूसरी किताब है पूंजी पर, कैपिटल।
या स्मिथ जी से स्टॉक कहते हैं।
ये अर्थव्यवस्था का इंजन है।
बिल्कुल
बिल्कुल।
बिना पूंजी के बड़े पैमाने पर श्रम विभाजन मुमकिन ही नहीं है। मशीनें, कच्चा माल, मजदूरों को एडवांस देना, इन सब के लिए पैसा चाहिए।
और ये पूंजी आती कहाँ से है?
बचत से, सेविंग से। स्मिथ का मानना था कि फिजूल खर्ची ना करना और बचत करना ये एक सामाजिक गुण है, क्योंकि यही बचत निवेश बनती है।
अच्छा, और इसी निवेश से उत्पादक श्रम को रोजगार मिलता है।
उन्होंने प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव लेबर में फर्क किया था ना। आज की सर्विस इकोनॉमी में यह फर्क थोड़ा धुंधला गया है, लेकिन उनका पॉइंट था कि कौन सा श्रम सीधे पूंजी निर्माण में मदद करता है।
दिलचस्प है। फिर तीसरी किताब में वो इतिहास देखते हैं।
हाँ, कि क्यों अलग अलग देशों में तरक्की की रफ्तार अलग रही। उनका मानना था कि स्वाभाविक क्रम तो है, पहले खेती, फिर उद्योग, फिर विदेशी व्यापार।
लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं हुआ।
नहीं, यूरोप में सरकारी नीतियों और पुराने सामंती नियमों की वजह से शहरों में व्यापार और उद्योग खेती से पहले ज्यादा विकसित हो गए। ये दिखाता है कि संस्थाएं, मतलब इंस्टीट्यूशंस, कितने जरूरी हैं आर्थिक विकास के लिए।
और चौथी किताब में वो मर्केंटलिज्म पर सीधा हमला करते हैं।
बिल्कुल। वो जो सोच थी कि सोना चांदी ही असली धन है, उसे वो सिरे से खारिज करते हैं। असली धन है वो चीजें जो लोगों की जरूरतें पूरी करें।
इसीलिए वो मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड के हिमायती थे।
दीदी पड़ती हैं और संसाधन गलत जगह लगते हैं।
और उनका वो एब्सोल्यूट एडवांटेज का सिद्धांत।
हाँ, कि अगर कोई देश किसी चीज को दूसरों से सस्ता बना सकता है तो उसे वही बनाना चाहिए, और दूसरों से वो खरीदना चाहिए जिसे वो सस्ता बनाते हैं। इससे सभी देशों का फायदा होगा।
ये तो बहुत तार्किक लगता है। अब आते हैं 5वीं किताब पर, सरकार की भूमिका और राजस्व। हमारे श्रोता के नोट्स में भी इस पर काफी जोर था। स्मिथ सरकार के बारे में क्या सोचते थे?
देखिए, स्मिथ कोई अराजकतावादी, मतलब एनार्किस्ट नहीं थे। वो मानते थे कि सरकार जरूरी है, लेकिन उसकी भूमिका सीमित और साफ तौर पर परिभाषित होनी चाहिए।
अच्छा, क्या काम थे सरकार के उनके हिसाब से?
उन्होंने मुख्य तौर पर 3 काम गिनाए। पहला, देश की रक्षा करना बाहरी हमलों से, मतलब सेना रखना।
ठीक है, डिफेंस।
दूसरा, न्याय की एक पक्की और निष्पक्ष व्यवस्था स्थापित करना, पुलिस, अदालतें, जिससे लोगों के अधिकार, उनकी संपत्ति सुरक्षित रहे। ये बहुत बहुत जरूरी है उनके हिसाब से। इसके बिना ना व्यापार चलेगा ना निवेश होगा।
बात तो सही है, सुरक्षा और न्याय। और तीसरा?
तीसरा थोड़ा ज्यादा व्याख्या वाला है। वो कहते हैं कि सरकार को कुछ ऐसे सार्वजनिक कार्य और संस्थाएं, पब्लिक वर्क्स एंड इंस्टीट्यूशंस, बनानी और संभालनी चाहिए, जो पूरे समाज के लिए तो बहुत फायदेमंद हो, लेकिन जिन्हें कोई निजी व्यक्ति या कंपनी मुनाफे के लिए नहीं चलाएगी, क्योंकि उनसे सीधे मुनाफा कमाना मुश्किल या नामुमकिन है।
जैसे?
क्या उदाहरण दिया उन्होंने? जैसे सड़कें, पुल, बंदरगाह, नहरें, और दिलचस्प बात है, उन्होंने बुनियादी शिक्षा को भी इसमें शामिल किया।
शिक्षा को भी? ये तो काफी दूर की सोच थी उस वक्त के हिसाब से।
बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक पेच है। स्मिथ की शर्त थी कि ये वही काम हो जो निजी तौर पर लाभप्रद न हो पर समाज को बड़ा फायदा दें।
अब कौन सा काम इस श्रेणी में आता है और कौन सा नहीं, यहीं पर बहस की गुंजाइश बनती है।
हाँ, ये तो है। मतलब वो चाहते थे कि सरकार बेवजह अर्थव्यवस्था में टांग न अड़ाए।
सही।
उसका काम हो एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना, नियम तय करना और फिर लोगों को अपनी आर्थिक गतिविधियां चलाने देना।
इन सब कामों के लिए पैसा चाहिए, टैक्स।
हाँ,
टैक्स के बारे में क्या कहा उन्होंने?
टैक्स पर उनके चार सिद्धांत बहुत मशहूर हैं, आज भी उतने ही प्रासंगिक। पहला, समानता, इक्विटी, मतलब लोग अपनी कमाई या हैसियत के अनुपात में टैक्स दें।
ठीक है।
दूसरा, निश्चितता, सर्टेनिटी, टैक्स कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है, ये सब बिल्कुल साफ होना चाहिए, कुछ भी मनमाना नहीं।
अच्छा।
तीसरा, सुविधा, कन्वीनियंस, टैक्स देना लोगों के लिए आसान होना चाहिए, मुश्किल नहीं। और चौथा, दक्षता, एफिशिएंसी, टैक्स वसूलने की लागत कम से कम होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि टैक्स जमा करने में ही बहुत पैसा खर्च हो जाए।
अरे वाह, ये चारों बातें तो आज भी किसी भी अच्छी टैक्स प्रणाली की कसौटी हैं।
बिल्कुल, और स्मिथ ने सरकारी कर्ज, पब्लिक डेब्ट के खतरों के बारे में भी चेताया था। उनका मानना था कि सरकारों को ज्यादा उधार लेने से बचना चाहिए और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए।
लगता है उनकी सलाह आज भी बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और श्रोता के भेजे स्रोतों को समेटें तो मुख्य संदेश क्या निकलते हैं? एक तो वो अदृश्य हाथ वाली बात।
हाँ, इनविजिबल हैंड। ये विचार कि व्यक्तिगत स्वार्थ भी समाज के लिए अच्छा हो सकता है, ये आज भी बहुत पावरफुल है और उतना ही विवादित भी।
दूसरा, श्रम विभाजन, डिविजन ऑफ लेबर, ये तो अर्थव्यवस्था की नींव है। भारत में भी हम देखते हैं छोटे कारीगरों से लेकर बड़ी आईटी कंपनियों तक स्पेशलाइजेशन कितना जरूरी है।
तीसरा, वो मुक्त व्यापार बनाम संरक्षणवाद की बहस। स्मिथ के मर्केंटलिज्म की आलोचना आज भी ग्लोबलाइजेशन की चर्चाओं में गूंजती है। भारत ने 1991 में जब अपनी अर्थव्यवस्था खोली तो ये सारे तर्क फिर से सामने आए।
बिल्कुल। चौथा, सीमित लेकिन मजबूत सरकार। आर्थिक आजादी जरूरी है, पर बिना कानून के राज और न्याय व्यवस्था के वो टिक नहीं सकती। सरकार का काम है नियम बनाना और लागू करना।
हाँ, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी कोशिशें इसी दिशा में हैं, मैदान को समतल बनाना ताकि खिलाड़ी खेल सकें।
और पांचवा, पूंजी निर्माण, बचत और निवेश का महत्व। ये तो व्यक्तिगत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हर जगह लागू होता है।
इस किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो सच में सोचने पर मजबूर करती हैं। श्रोता के नोट्स में भी इनका जिक्र था।
हाँ, जैसे वो सबसे मशहूर वाली कि हम कसाई, शराब बनाने वाले या बेकर की दयालुता के कारण अपने रात के खाने की उम्मीद नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वे अपने हित का ध्यान रखते हैं।
बिल्कुल, सीधी सी बात है, बाजार सेल्फ इंटरेस्ट से चलता है, लेकिन ये सेल्फ इंटरेस्ट दूसरों की जरूरतें पूरी करने से ही सत्ता है।
और वो अदृश्य हाथ वाली, उसे एक अदृश्य हाथ भारा एक ऐसे लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित किया जाता है जो उसके इरादे का हिस्सा नहीं था।
हाँ, मतलब अच्छा नतीजा बिना अच्छे इरादे के भी आ सकता है अगर सिस्टम सही हो। अनपेक्षित सामाजिक लाभ।
एक और जो मुझे बहुत अच्छी लगी, निश्चित रूप से कोई भी समाज फल फूल और खुश नहीं हो सकता जिसके सदस्यों का बड़ा हिस्सा गरीब और दुखी हो।
सही, ये दिखाता है कि स्मिथ सिर्फ मुनाफे के गणितज्ञ नहीं थे, उनमें एक गहरी नैतिक चिंता थी। वो चाहते थे कि समृद्धि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।
हाँ, और ये भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन के खतरे भी बताए थे कि अगर कोई आदमी जिंदगी भर बस एक ही छोटा सा काम करता रहे
तो वो उतना ही मूर्ख और अज्ञानी बन सकता है जितना कि इंसान बन सकता है। इसीलिए वो शिक्षा को जरूरी मानते थे ताकि दिमाग चलता रहे, कुंद न हो जाए।
तो इन सब बातों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देखें? व्यक्तिगत स्तर पर तो करियर में स्पेशलाइजेशन फायदेमंद है, पर सीखते रहना भी जरूरी है। और हाँ, बचत।
बिल्कुल, और अगर कोई बिजनेस चला रहा है तो स्मिथ की बातें काम बांटने, बाजार को समझने, कंपटीशन से सीखने की प्रेरणा देती हैं। सफल बिजनेस वही है जो लोगों की जरूरतें पूरी करे।
और सरकारी नीतियों के स्तर पर तो ये बहसें आज भी जारी हैं, व्यापार नीतियां, टैक्स, सरकार का रोल। स्मिथ का फ्रेमवर्क सोचने का एक आधार देता है।
वैश्विक स्तर पर देखें तो ग्लोबलाइजेशन स्मिथ के श्रम विभाजन का ही विस्तार है, और यह भी कि देशों के विकास के लिए सिर्फ नीतियां काफी नहीं, मजबूत संस्थाएं चाहिए, कानून, प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह।
तो अंत में क्या सबक लेकर जाएं हम इस चर्चा से? मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक तरक्की कोई जीरो सम गेम नहीं है। ऐसा नहीं कि एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। अगर सही माहौल हो, आर्थिक आजादी हो, कानून का राज हो, तो सब मिलकर आगे बढ़ सकते हैं।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि बाजार एक अद्भुत अपने आप चलने वाली व्यवस्था है जो लोगों की निजी इच्छाओं को समाज की भलाई में बदल सकती है। लेकिन ये जादू तभी काम करता है जब नियम कायदे हों, न्याय हो और सरकार अपनी सही भूमिका निभाए। ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। स्मिथ का जोर संतुलन पर था।
हाँ, और उनका वो समग्र नजरिया, इकोनॉमिक्स को नैतिकता और समाज से जोड़ के देखना, आज भी हमें इसी की जरूरत है। श्रुता के भेजे स्रोतों से भी यही बात उभर कर आई।
द वेल्थ ऑफ नेशंस आज भी प्रासंगिक है क्योंकि ये हमें समृद्धि के बुनियादी सवालों पर सोचने को मजबूर करती है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है। स्मिथ ने सरकार के तीन मुख्य काम बताए थे, सुरक्षा, न्याय और कुछ पब्लिक वर्क्स। पर क्या आज की दुनिया इतनी बदल गई है, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, महामारी, क्या सरकार की भूमिका अब सिर्फ इतनी ही रह सकती है या उसे और ज्यादा सक्रिय होना पड़ेगा?
ये बहुत बड़ा सवाल है। शायद स्मिथ आज होते तो इस पर भी कुछ जरूर लिखते।
शायद
ता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।